ओम शांति, ओम शांति। जैसे कहा गया है यज्ञ में बाबा एक ही, मम्मा भी एक ही, और भ्राता जगदीश के लिए भी कहते थे कि एक ही भ्राता जगदीश जी है यज्ञ के अंदर। वैसे ही वास्तव में देखा जाए तो दादी ऑलराउंडर भी यज्ञ में एक ही है। आज हम दादी ऑलराउंडर की जो हमारे पूर्वज की सीरीज चलती है तो दादी ऑलराउंडर के बारे में सुनेंगे। मैंने क्यों कहा कि दादी ऑलराउंडर भी एक ही है, क्योंकि जो भगवान करत है उसकी दादी माँ है। और हमने दादी के बारे में जो देखा तो दादी गुलजार जी को यज्ञ में लाने में मुख्य भूमिका दादी ऑलराउंडर जी ने निभाई है, तो आज उनके बारे में हम सुनेंगे। तो दादी बताती थी कि हैदराबाद में जब शुरू शुरू में ज्ञान की शुरुआत हो गई थी, संस्था की शुरुआत हो गई थी वो मंडली की, लेकिन दादी उस संपर्क में नहीं थी। दादी की मामी जिनका नाम गंगा देवी था, उनके पास दादी जाया करती थी ऑलराउंडर दादी, क्योंकि जो दादी की मामी थी वो उनको भक्ति में अटूट निश्चय था, अटूट भक्ति करती थी, एकदम निश्चय था, बहुत पक्का भक्ति करती थी। और दादी का भी भक्ति का संस्कार सत्व प्रधान था। और कश्मीर से लाल अक्षरों में एक पत्र आया करता था उनके मामी के पास, दादी के मामी के पास। तो पत्र जब सुनती थी तो दादी को बहुत शांति मिलता था, अंदर सन्नाटा छा जाता था और बहुत अच्छा लगता था। इसलिए दादी उनके पास बार बार जाती थी वो सुनने, पत्र सुनने के लिए। और उसके बाद में दादी की मामी बाबा को निमंत्रण दिया, कोई महापुरुष समझ के, बहुत महान महात्मा समझ के निमंत्रण दिया कि हमारे घर में आके आप सत्संग कीजिए। तो बाबा सत्संग के लिए जब आए उस समय 30 जने से आए थे, जिसमें मम्मा भी थी, मम्मा को उस समय ओम राधे बोलते थे, ध्यानी दादी, बाबा और भी सब थे। और 30 जने से जब आए तो सत्संग शुरू हुआ। जब सत्संग शुरू हुआ तो दादी सामने बैठी थी, जब बाबा सिंधली पर बैठे जब सत्संग शुरू करने के लिए, तो दादी को बाबा की भ्रिकुटी से एकदम लाल गोला प्रकाश का दिखाई दिया, जो कि दादी को बहुत आकर्षित करता था। वो बोला अपने तरफ खींचता था, बहुत अच्छा लगता था और बहुत शांति की अनुभूति होती थी दादी को। फिर दादी को संकल्प आया, ये तो कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, बहुत बड़ा महात्मा है, ऐसा महात्मा को तो हमने कभी नहीं देखा, बाबा जैसे महात्मा को, तो क्यों ना मैं गुरु बना लूं इनको। क्योंकि दादी सुनी थी कि गुरु बिना गति नहीं होती है, और हमने तो गुरु बनाया नहीं, इसीलिए क्या करूं, तो इन्हीं महापुरुष को मैं गुरु बना लूं, और संकल्प कर लिया दादी ने। ऐसे चिंतन करते करते, संकल्प चलते चलाते चलाते दादी उस दिन सत्संग पूरा हुआ, सभी लोग घर गए और दादी उन्हीं के पास रह गए मामी के पास। वहां पे सत्संग दो टाइम चलता था उनके मामी के घर में, सुबह और शाम, सुबह 4 बजे और शाम को। तो सुबह सत्संग होने के बाद में बाबा ने ध्यानी दादी को कहा कि बच्ची, इन बच्ची को 3 लोग का नक्शा बताओ, उस समय में चित्र नहीं था शायद, नक्शा बना के बोला कि इनको बताओ। फिर ध्यानी दादी ने ऑलराउंडर दादी को 3 लोग के नक्शा के बारे में बताए, और जब तक सत्संग चला उस तब तक दादी वहीं थी, तो सभी के साथ अच्छा स्नेह हो गया, दादी का संबंध जुट गया। और सत्संग के बीच में एक दिन बाबा बोले कि जिनको देवलोक में जाना है उनको पवित्र जीवन जीना है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो उसी सत्संग के बीच में दादी के पति युगल भी सत्संग में आते थे, और उनके युगल को भी बहुत अच्छा लगता था ये सत्संग। तो दोनों अपने राय सलाह से कहे कि हम आजीवन पवित्र जीवन जिएंगे, और दोनों जन ज्ञान में चलने लगे। फिर तो बाबा चले गए और बाबा के साथ पत्रों के द्वारा बातचीत लेन देन होता था। उसके कुछ दिन बाद में हैदराबाद सिंध में बाल भवन का निर्माण हुआ, और बाल भवन का नियम था कि जो ज्ञान में चलते हैं या जो ज्ञान में चलना चाहते हैं वो अपने बच्चे को चाहे बच्ची को इसमें रख करके पढ़ाई करा सकते हैं। तो फिर बाबा ने ऐसे संदेश जब दादी को मिला तो दादी ने अपना बच्ची को, जिनका नाम शोभा थी, जो दादी गुलजार जी हमारी है, उनको दादी ने उनमें दाखिल कराया और पढ़ाई शुरू कराया। तो पढ़ाई इतनी अच्छी थी और वातावरण इतना अच्छा था जो बहुत अच्छा लगा। दादी को भी अच्छा लगने लग गया और उन्होंने दादी को भी अच्छा लगने लग गया, और इस वातावरण को और दादी गुलजार जी के अंदर जो परिवर्तन देखा तो उनके संबंधी लोग भी अपने बच्चे को उसमें भर्ती करा दिया पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के लिए भर्ती करा के वो सब भी बाबा के सत्संग में आने लग गए, उन सबको भी अच्छा लगने लग गया ज्ञान। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब एकदम बढ़िया था, सब खुश थे। उसी बीच हैदराबाद में पिकेटिंग शुरू हुआ, हंगामे हो गए, उपद्रवी लोग बहुत हलचल मचाने लग गया, बहुत हंगामा हो गया। उस बीच में क्या हुआ तो दादी के जितने भी संबंधी थे सब संबंधी अपने बच्चे को ले और सभी ज्ञान को छोड़ दिया। और ज्ञान को छोड़ने के बाद में दादी को और सभी ज्ञान के विरुद्ध हो गए, दादी एक तरफ और उनके युगल सहित सब एक तरफ। और दादी को जब प्रेशर देने लगे कि इसमें आप नहीं जाओ तो दादी को फिर वैराग आ गया इस संसार से, इस समाज, इस परिवार से। और दादी रोज भगवान को पुकारती थी, हे प्रभु हमें और इस दुआ बच्ची को अर्थात दादी गुलजार जी को कैसे आप अपने शरण में लेंगे, कह करके दादी अंदर ही अंदर बाबा को कहती थी भगवान को। उतना परिचय बाबा का तो दादी को नहीं था, लेकिन फिर भी कहती थी मन ही मन। फिर भी दादी के घर से सत्संग, उसके बाद में हंगामा होने के बाद में हमारी जो आश्रम था वो कराची चले गए, जो कि दादी के घर से 10 मील दूरी पे था, ऐसे बताती है दादी। तो अब क्या करें, फिर भी दादी रोज सुबह 4 बजे या तो घोड़ा गाड़ी में जाती थी या तो ट्राम, कोई गाड़ी का नाम होगा, ट्राम कौन सी गाड़ी होती पता नहीं, ट्राम लिखा है वैसे, तो उस ट्राम में बैठ के जाती थी जिसमें मजदूर लोग जाया करते थे। दादी बताती है कि उस ट्राम में जो मजदूर लोग बैठते थे उनकी दृष्टि वृत्ति उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं उसमें जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि हमें सत्संग करना था, भगवान से ज्ञान लेना था, और मैं सोचती थी जाको राखो साइया मार सके न कोई, बाल बाका कर न सके, चाहे सब जग बैरी हुई। तो ऐसे निश्चय से दादी जाती थी, सुबह 4 बजे जाती थी, शाम को 4 बजे तक आ जाती थी, एकदम निर्भयता से जाती थी, आराम से जाती आती थी, उसमें उतना बंधन नहीं था। लेकिन दादी को लग रहा था कि ये शोभा दादी गुलजार जी को जो वहां से ले आया था, दादी गुलजार जी को भी बाल भवन से लाया गया था, तो पता नहीं अब ये दुनियावी में चली जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए बाबा के घर में रहते तो अच्छा रहता, इससे दादी को संकल्प चलने लग गया। और दादी ये बात बीच बीच में घर में बोलती थी कि ये बाबा के घर में रहे तो अच्छा है, तो घर वाले पूरा बिगड़ जाती थी, बहुत एकदम दादी को प्रेशर देते थी, डांटती थी, धमकाती थी कि वहां कभी गलती से भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं, खुद तो बिगड़ गई वो मंडली में जाके और इसके बिगाड़ने के पीछे लगी हुई है। तो फिर दादी अब क्या करती, घर के कोने में जाके चुपचाप होके बैठती थी और बाबा को याद करती थी कि भगवान हमें इस बंधन से कब छुड़ाओगे, कब मैं बंधन मुक्त बनूंगी, ऐसे ऐसे। फिर दादी अब क्या करे, दादी तो सत्संग के बिगैर रह नहीं सकती थी, दादी को सत्संग के बिना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी 2-3 दिन में कभी अपना ड्राइवर को समझा के, कभी घोड़ा गाड़ी में, कभी घर से, किसी बहाने सत्संग में दादी चली जाती थी। ऐसे होते होते घर, फिर दादी को लगा कि आखिर ये कब तक, ऐसे में कब तक, और इससे अच्छा क्यों ना हम दोनों जने बाबा के कार्य में ही जीवन को दे दूं, ईश्वरीय कार्य में जीवन को दे दूं। तो फिर एक रात क्या हुआ कि अमृत वेला में 4 बजे दादी ने गुलजार दादी को, जो सोई हुई थी, उसको जगाया और चुपचाप दोनों जने वहां से निकल गए। दोनों जने निकल के पहुंच गई बाबा के सत्संग में। सत्संग चालू था, सत्संग चालू था। उस समय बाबा ने देखा तो कहा बच्ची तो आ गई है। फिर बाबा ने कहा बच्ची इतने हंगामे में जो आई हो यहाँ कैसे रह सकोगी, क्योंकि हैदराबाद में तो बहुत हंगामे और पिकेटिंग हो रहा है, आपको नहीं आना चाहिए। तो दादी ने कहा बाबा उस दुख की दुनिया की, उस बिकारी दुनिया की, रावण की दुनिया को लात मार करके आई हूँ और मुझे अब यही रहना है। फिर बाबा थोड़ा सा सोचने लगे। फिर बाबा ने कहा मम्मा को कि बच्ची आई है सीतम सह के, कष्ट दुख बहुत उठा के, इसलिए सिलाई क्लास में इनको रख दो और कोई भी आए तो बोलना कि ये सिलाई क्लास में है, वहां शायद सिलाई क्लास चलती होंगी शायद। तो दादी सिलाई क्लास में रहने लगे, लेकिन दादी को अंदर में था कि पता नहीं कोई मुझे खींच के ले न जाए, उठा के ले न जाए, ऐसे संकल्प अंदर में आ रहा था। शाम को 6 बजे का समय था और शाम को 6 बजे दादी के युगल, देवर और उनके 2 मामे 4 लोग टैक्सी करके आए, 2 लोग अंदर आए और बाबा को बोला मुझे रुक्मणी से मिलना है। शायद पहले का नाम दादी का शायद रुक्मणी था, शायद पता नहीं अभी उतना तो उसमें क्लियर नहीं, हमने कई लोगों से पूछा लेकिन क्लियर नहीं बताया। मुझे रुक्मणी से मिलना है, तो बोला कि भले मिलो। फिर दादी के परमिशन से, बाबा के परमिशन से दादी के पास गए, बोला यहाँ क्यों आई हो, तो दादी ने कहा कि मैं सत्संग के बिगैर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहूंगी, सिलाई करके शरीर निर्वाह करूंगी और सत्संग सुनूंगी। तो उनको तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया, क्योंकि वो सब बहुत बड़े संपन्न परिवार के थे, बहुत अच्छे पैसे वाले थे लोग, धनाढ्य लोग थे, तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया उनका। वो तो गुस्से से आग बबुल्ला हो गया, आंख लाल लाल हो गया उसका। फिर तो जबरदस्ती 2 जने दादी को क्या किया, हाथ पांव पकड़ के घसीट के टैक्सी में डाल दिया। दादी ने बहुत प्रयत्न किया वो टैक्सी से निकलने का, लेकिन दादी निकल नहीं पाई। फिर दादी जोर जोर से चिल्लाए कि मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, मैं आत्मघात कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। एकदम जोर जोर से जब दादी ने हंगामा किया, फिर अब उनका पति को बाबा ने टच किया या तो डर गया, दोनों में से कुछ हो सकता है। फिर 5 मील दूरी पे जहां से हमारी सत्संग आश्रम थी, वहां से 5 मील दूरी पे उनके लौकिक संबंधी का घर था। उस लौकिक संबंधी के घर में ले गए दादी को और 2 ही जने रहे। और दादी को कहा, ऑलराउंडर दादी को, कि तुम क्यों नहीं घर में रहना चाहती हो, क्यों मरना चाहती हो, क्यों आत्मघात करना चाहती हो। तो दादी कहा कि मुझे सत्संग करना ही है। तो उनके युगल ने बोला भले करो, कोई हर्जा नहीं। तो दादी ने कहा कि भले करो, ऐसे नहीं चलेगा काम, हमारी 4 शर्तें माननी पड़ेगी और वो शर्तें मानना ऐसे मुंह से नहीं होगा, आप लिखित में दोगे, लिख के दोगे तभी मैं उस पर चलू मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। तो उनके युगल सोचे होंगे कि रात में कुछ घटना न घट जाए, कुछ हो ना जाए, पता नहीं, 2 ही जने हैं, काम बढ़ जाएगा। इसलिए उनके युगल ने क्या किया, तो वो लेटर लिखने के लिए स्वीकार किया। तो दादी की 4 शर्त थी कि एक तो हम लौकिक संबंधी जो हमें ज्ञान में चलने से दबाव डालते हैं उनके साथ हम नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। दूसरी शर्त थी दादी की, शोभा बाबा के पास ही रहेगी, शोभा था दादी गुलजार जी बाबा के पास ही रहेंगी। तीसरा शर्त था कि रोज सत्संग में जाऊंगी। और चौथा शर्त था आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। तो उनका युगल ने पत्र लिख के दे दिया। फिर उनके युगल और दादी दोनों जने उसी मकान में रहने लग गए और दूसरे दिन सुबह 4 बजे दोनों जने सत्संग में पहुंच गए। जब सत्संग में पहुंच गए तो देखा कि ये तो कल घसीट के ले गया और अभी तो ये साथ में सत्संग में, ये कोई सा मामला हो गया गड़बड़। फिर सभी को अच्छा लगा, खुश हुआ, बाबा भी खुश हुए, मम्मा भी खुश हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2.5 महीने तक दादी बोलती है कि हम वहां पे उस मकान में रहे, उस मकान का किराया 300 था उस समय। और फिर उनके युगल कहने लगे कि हम 300 रुपया दे रहे हैं, इससे अच्छा हम घर में रह के अलग रहेंगे, ज्ञान में चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप घर चलो। फिर दादी को ऐसे पटाके ले गए घर। फिर दादी गई, घर जाने के बाद थोड़े दिन ठीक ठाक रहा, उसके बाद में रोकना टोकना शुरू हो गया। फिर उनके जो दादी शायद सबसे छोटी थी, पता नहीं, ऐसे बताती है कि उनके बड़े भाई का प्रेशर ज्यादा पड़ा कि कारोबार साथ में थे ना, तो इसलिए कि इनको जाने नहीं दो ऐसे कह के बहुत प्रेशर डालने लग गया। फिर भी दादी छिप छिप के जाती थी जाती थी, लेकिन ये छिप छिप के जाना कब तक, है ना, छिप छिप के जाना कब तक, बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन लोगों को पता चल गया, तो दादी को बहुत टाइट कर दिया कि नहीं तुमको नहीं जाना है। फिर भी दादी बोली कि मैं जाऊंगी। फिर उन्होंने क्या किया कि दादी को घर में बंद करके चारों तरफ से लॉक लगा दिया। एक दिन हुए, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, दादी को भोजन करने के लिए कहे तो दादी कहे कि जब तक आत्मा भोजन नहीं करेगी तब तक ये शरीर भी भोजन नहीं करेंगे। फिर दादी भी भोजन नहीं करे, उधर ये भी नहीं छोड़े नहीं, बड़ा मुश्किल। फिर भी दादी को संकल्प चलता था कि ये जेल खाने में आके रहूंगी तो कब तक रहूंगी, यहां से निकलू तो निकलू कैसे। ऐसे करते करते दादी को संकल्प चला कि भक्त प्रहलाद जो है ना खिड़की से मना पहाड़ से कूद गया तो भगवान ने उनको बचाया, तो ऐसे मुझे भी तो भगवान बचाएगा, मैं खिड़की से कूद जाती हूँ। तो दादी खिड़की से कूदने की तैयारी की तो रजाई को भी फोल्ड करके बांध करके डाला कि रजाई पे कूदूंगी तो आवाज नहीं होगा, दूसरे कोई सुनेगा नहीं। फिर दादी ने खिड़की से रजाई को फेंका, फिर अब खुद कूदने की बारी आई तो देखा कि वहां तो पहरा वाला घूम रहे थे तो अब पता चल जाएगा। फिर अब क्या करें, बड़ा मुश्किल है। शायद रात की 12 बज रही थी उस समय। फिर दादी के जो बगल में जो मकान था, उस मकान के और दादी के मकान के बीच की फासला सी 8-10 फीट बताती है दादी और गैलरी की। तो दादी सोची मैं इस मकान से उस मकान पे कूद के चला जाऊं, और दादी सोचती अगर मैं जाऊंगी अगर कूद नहीं सके बीच में गिर गई तो और मामला बिगड़ जाएगा। फिर भी कहती चलो अब भगवान के कार्य के लिए कूद रहे, जो करे भगवान, ऐसे कह के दादी कूद गई, उस पार गई। उस पार गई, गर्मी का मौसम था तो गैलरी में उनके घर के लोग सोए हुए थे, दूसरे मकान वाले, तो उनके बच्चे के ऊपर पैर पड़ गया दादी को। बच्चा जोर से चिल्लाए, जोर से चिल्लाए तो दादी को डर हो गया कि इनकी माँ जग गई तो और मुसीबत। उनकी माँ जग गई, फिर भी दादी को उन्होंने देख नहीं पाया और दादी वहां से चली गई। अब चली तो गई लेकिन निकले तो निकले कैसे, दरवाजा तो बंद है, तो बड़ा मुश्किल। अब कहाँ जाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से दीवार को टटोल टटोल के दादी ने स्विच बोर्ड को ढूंढा। स्विच बोर्ड ढूंढने के बाद में स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही देखा तो मकान मालिक भी जग गया, पता नहीं कौन स्विच ऑन किया। फिर स्विच ऑफ करके दरवाजे खोल के बाहर निकला, दादी बताती है। बाहर निकलने के बाद में एक होटल था और आवाज आ रही थी, उसके बाद दादी निकली वहां से पैदल, और गैलरी से कूदने के कारण चप्पल भी नहीं ले पाई थी दादी, और दूसरा कपड़ा भी नहीं था, जो रात की पहनी हुई थी वही कपड़ा थी, वो भी बांध बूंद के रखी थी कि फंस न जाए कहीं कूदते समय। ऐसे करते करते जब निकलने लगी तो दादी को एक पुलिस वाला मिल गया, और पुलिस वाला ने कुछ कहा नहीं लेकिन दादी के पीछे पीछे आने लग गया कि औरत कहाँ जा रही रात को। फिर दूसरा पुलिस वाला पीछे कर दिया, फिर तीसरा चौथा करते करते 8 पुलिस वाला पीछे हो गए, और पुलिस वाला ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, तो दादी ने कहा कि मैं सत्संग जा रही हूँ। बोला इतने रात को, उस समय 1:30 बज रहा था शायद, बोला इतने रात को कौन सा सत्संग चलता है। तो दादी कहती है कि इतना रात में मुझे नहीं पता लेकिन मैं घड़ी नहीं देख पाई और मैं गलती से आ गई, तो अभी मैं वहां जाके रुकूंगी फिर सत्संग करूंगी। फिर दादी को बैलगाड़ी वाला मिला, फिर बैलगाड़ी पे बैठ गई। फिर बैलगाड़ी पर बैठने के बाद में पुलिस वालों को शक हुआ, पता नहीं बैलगाड़ी वाला कोई गलत जगह पर न ले जाए। फिर पुलिस वाला पीछा किया, फिर पुलिस वालों ने कहा कि आप थाने में रुक जाओ फिर कल चले जाना। फिर दादी डर गई, पता नहीं यहाँ जाऊं क्या करूं, अच्छा नहीं है पुलिस वालों के साथ जाना। फिर दादी ने पुलिस वालों को बताया कि मेरा माँ के घर इधर पास में है, मैं वहां चली जाती हूँ। फिर भी पुलिस वाला उन्होंने नहीं छोड़ा और दादी के साथ ही उनके माँ के घर के पास गई, लेकिन माँ के दरवाजा बहुत पीटा दादी ने, दरवाजा नहीं खोली क्योंकि माँ तीसरी मंजिल पे सोई हुई थी। उसके बाद में दाती बताती है कि मामा के घर गया, जो कि मामा पूरा ज्ञान के विरोध में थे, पूरा एंटी। अब दादी के पास कोई रास्ता ही नहीं था, करे तो करे, इधर पुलिस वाला से पीछा छुड़ाओ या तो मामा से पीछा छुड़ाओ। तो इससे अच्छा मामा के पल्ले पड़ जाओ, अच्छा है। फिर मामा उठे, पुलिस वालों को कहा ये हमारी बच्ची है, आप सब जाइए, ये हमारे घर में रहेगी। फिर दादी को बहुत रफ व्यवहार किया, बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया, बहुत डराया धमकाया दादी को, कहा कि तुम हमारे इज्जत को, आबरू को गवा दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, बहुत गाली दिया दादी को। इतने में दादी की माँ जग गई, बगल में थी शायद, और माँ जगने के बाद में माँ के पास चली गई, मामा सो गए। मामा के माँ को सब बात बताया, मामा को, माँ को भी बहुत बुरा लगा ये बात, और कि 3 दिन तक हमने खाने नहीं दिया, घर में बंद करके रखा, ये सब सब कुछ। फिर माँ ने रखा और सुबह दादी रुक्मणी के साथ उनको सत्संग में भेजा। घोड़ा गाड़ी पे गई दादी, सत्संग में जाते ही मम्मा ने पूछा कि किस लिए आई हो, तो बोली कि मम्मा मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, पुरानी दुनिया की लात मार करके आई हूँ, अब यहीं रहूंगी। तो मम्मा ने फिर बहुत परीक्षा लिया दादी को, निश्चय का परीक्षा लिया कि तुम रह सकोगी, यहाँ बहुत दुख होता है, आपको घर वाले फिर आएंगे, बुलाएंगे, क्या करोगे। तो दादी ने कहा कि जब निकल गया हूँ सदगुरु के दरबार में, पांव रख दिया हूँ द्वार घर में, तो अब यहाँ से पांव पीछे नहीं करूंगी। बाबा जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ रखेंगे, वही रहूंगी, वही खाऊंगी, वही करूंगी। तो फिर रहने लग गए। उधर पता चला कि ताला तो बंद है, और गई तो गई कहाँ। फिर देखा, और पड़ोसी सोचे कि चोर आए, लेकिन चोर तो कुछ सामान लिया नहीं। तो ऐसे पता लगाते लगाते लगा कि शायद इधर से कूद के, इधर से निकल के गई, तो शायद वही गई होगी सत्संग में। तो फिर उनके युगल आए, फिर बोला कि तुम चलो, तुम जैसे चाहोगे वैसे तुमको रखूंगा। फिर बोले कि दादी ने, दादी तो थोड़ा सा डर गई कि जाऊंगी फिर पता नहीं उठा के ले जाएगा, क्या करेगा। फिर दादी कही कि मैं शिक्षक तो मेरे धारण करके गई, और दादी ने कहा कि पुरानी दुनिया की जो थी आपकी पत्नी वो मर गई है, अब मेरा पीछा नहीं करो, मुझे अविनाशी सुख लूटना है लूटने दो, तुम्हें दुनिया भी सुख लूटना है तो तुम भले दूसरी शादी करके दुनिया भी सुख लूटो, हमें कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं आपको। तो फिर तो दादी के जो युगल थे वो बोले कि मुझे शादी करना है, आप लेटर दो। तो बोला, दादी ने बोला लेटर देने की जरूरत नहीं, आप भले करो, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, न करूंगा। फिर 7 दिन तक उनके दादी के पीछे पड़े, कभी लोभ के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी कुछ ऐसे करते करते दादी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे आपके घर नहीं जाना है, वो जीवन नहीं जीना, मैं आपके सब कुछ जेवर उबर भी दादी कुछ नहीं लाई थी, सब कुछ लिस्ट बना के उनके घर में रख दिए थे कि अलमीरा में, कि उनको ये न लगे कि हमारे सामान लेके गए हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, तो उन दादी को जो ज्ञान सुनाई थी ना गंगा देवी मामी, उन्होंने भी दादी को बहुत समझाया, देखो मैं परवर्ती में रह के निमित्त भाव से चलती हूँ, ऐसे तुम चलो, जीवन कोई छोटा नहीं होता है, इतने बड़े घर के हो, वहां जाके आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इतना दुख उठा पाओगे कि नहीं पाओगे। लेकिन दादी ने कहा जो निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आएंगे। और दादी ने फिर लास्ट में लेटर भी लिख के दिए, और लेटर लिखने के बाद में दादी ने उनसे छुटकारा ले लिया, और उनको भी दादी छुटकारा दे दिया, तब से यज्ञ में रहने लग गई। और दादी हर प्रकार की सेवा करती थी यज्ञ में, हर प्रकार की सेवा करने के कारण बाबा ने दादी का नाम रखा था ऑलराउंडर दादी। उसके बाद में बतन का नाम था दादी का धैर्य मणि पुष्पा, धैर्य पुष्पा, सॉरी धैर्य पुष्पा नाम था। उसके बाद में हर प्रकार की सेवा दादी करती थी, और दादी को एक बार बाहर जाना था सेवा के लिए। जब बाहर जाना था सेवा के लिए, तो बाबा ने हाथ उठवाया क्लास में कि दादी की सेवा कौन करेंगी, तो 3 भाई हाथ उठाए कि हम 3 जना मिलके दादी की सेवा करेंगे। दादी की जो सेवा थी ना जिम्मेवारी, वो सेवा हम 3 भाई मिलकर ही कर सकते हैं, ऐसे हाथ उठाया। तो दादी इतनी सेवा करती थी, एक महिला नहीं थी लेकिन पुरुष से भी बहादुर थी दादी। फिर पुष्पा बहन बताती है कि दादी माँ की पालना बहुत अच्छी देती थी, माँ जैसी पालना देती थी दादी हरेक को, कि जो कि लौकिक माँ भी किसी को नहीं दिया हो ऐसे। उस बीच में एक बात रह गया था कि दादी को जब बंद किया था ना लॉक में, उस समय बाबा विष्णु के रूप में आते थे और बाबा बात करते थे, बच्ची आपके कष्ट के दिन गए कि गए, अब दुख के अब पहार खत्म हुआ, अब सुख के दिन आने वाला है, थोड़ा धैर्य रखो, ऐसे बाबा बोलते थे उनको दादी को। फिर तीन जने से जो यहाँ सेवा के लिए जिम्मा दिए, तो उसके बाद में बताते हैं कि दादी बहुत जगह पे शायद सेवा के लिए नहीं गई है। दादी पहले रजौरी गार्डन में थी और रजौरी गार्डन के बाद में दिल्ली में आई है करोल बाग में। करोल बाग में आने के बाद में दादी हर प्रकार की सेवा करती थी और कराती थी और माँ की पालना देती थी, जो कि लौकिक में कभी नहीं मिला हो ऐसा पालना दादी देती थी। और हरेक को खाना, जब विशेष भोजन बनता था तो हरेक को अपने हाथ से खिलाती थी, कि हरेक को मिलना चाहिए, हरेक को बराबर मिलना चाहिए, और सबका ध्यान रखती थी। और दादी जब जो कपड़ा पहनती थी वो कपड़ा प्रेस करके नहीं पहनती थी, तकिया के नीचे फोल्ड करके ही कपड़ा को प्रेस करती थी दादी। और अब नई नई बहनें जो सेंटर पे आती थी उनको तो तकिया के नीचे वाला कपड़ा में मजा नहीं आता था, तो बोलती थी दादी ये मजा नहीं आ रहा, तो दादी बोलती थी तुम मेरे कमरे में देख के जाओ कपड़ा। पुष्पा बहन बताती ये बात, मेरे कमरे में देख के जाओ और मैं प्रेस करा के ला के दूंगी। तो दादी चुपचाप जो है ना कपड़ा प्रेस करा के उनको देती थी, कि लोगों को ये ना लगे कि दादी इनका करती है और मेरी नहीं करती है। और जब भाई बहने जब सब्जी काटते थे तो सब्जी से भी कटा हुआ जो कचरा से भी सब्जी निकाल के दादी इकोनॉमी से काम करती थी। अनाज की सफाई, भोजन, तोली, ये सब दादी अपने निगरानी में करवाती थी। जब भी दादी को टाइम मिलता था तो आगे बरामदे पे जाके बैठती थी, मुरली पढ़ती थी, चाहे कोई पत्रिका पढ़ती थी, आने जाने वालों का पूरा ध्यान रखती थी। पुष्पा बहन बताती है कि जब भी दादी के रूम में जाओ तो दादी बैठ के योग ही करती रहती थी, तो इतना बाबा के साथ प्यार था दादी का। दादी को बाबा के प्रति और मधुबन के प्रति और बड़ों के प्रति बहुत बड़ा सम्मान था। दादी बता के जीवन में बताते हैं कि दादी जो करोल बाग दिल्ली में थी तो उनके कमरे में बाथरूम नहीं था, बाहर निकल के बरामदे से बाथरूम में जाना होता था दादी को। सभी भाई बहनों ने कहा कि दादी आप प्लीज अंदर बाथरूम बनवाए, ने बोला कि नहीं हम तो यज्ञ में शुरू से रहे हैं ना, शुरू में तो ऐसा भी नहीं था, अभी तो बाबा ने कितना अच्छा दिया इसलिए हम नहीं बनवाएंगे। धीरे धीरे दादी की उम्र बढ़ गई और दादी को बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि दादी अब तो प्लीज बनवाओ, तो दादी ने कहा नहीं, बड़ी दादी परमिशन देंगी तो बनाऊंगी। फिर बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी गई थी पांडव भवन दिल्ली, फिर दादी से पूछा गया तो दादी ने कहा भले बनवाओ, फिर दादी ने बनवाया। दादी के जीवन में बताते हैं कि जब भी भोग के लिए कोई पैसा देता था तो उस पैसा से भी बचा के मधुबन के लिए पैसा भेजती थी। दादी मधुबन का पहले कोई भी चीज होती थी, फल आता था, कुछ भी आता था, मतलब तो सबसे पहले मधुबन जाए, पहले मधुबन में जाए उसके बाद में हम खाएंगे, कुछ भी नया मिलता था मधुबन के बाद में पहले बच्चे खाएंगे, बाबा के बच्चे जो भी समर्पित भाई बहन है वो खाएंगे, उसके बाद में हम खाएंगे, दादी का ऐसा हमेशा रहता था। जब बहुत बोल बोल करते थे कोई भाई बहन तो दादी चुप होके बैठती थी, कहती थी एक बोल बोल करते करते विकार आ जाते उसके अंदर, इसलिए चुप होके बैठो सब काम ठीक हो जाएगा। डर के नहीं चुप होके बैठती थी, निर्भय से बैठती थी, लेकिन वो अपने आप शांत हो जाएगी इस हिसाब से बैठती थी। दादी जी को लगता था कि बाबा की सेवा अच्छे से अच्छा हो, जो कोई नहीं किया ऐसा सेवा होना चाहिए। जब जिज्ञासु आते थे तो दादी बात करती थी और उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, घर में झगड़ा है क्या है, इस प्रकार से दादी बहनों को बोलती थी कि उनको आप ऐसे ज्ञान सुनाओ। और दादी उसके बाद में बताते हैं कि दादी जी को जगदीश भाई से बड़ा स्नेह था और जगदीश भाई को दादी जी से बड़ा स्नेह था, और दोनों के आपस में बहुत अच्छा स्नेह था। तो दादी जी को बहुत सम्मान देती थी जगदीश भाई जी, और दादी भी जगदीश भाई को बहुत सम्मान देती थी, क्योंकि दादी के लिए कहते थे कि दादी के वजह से भगवान ने हमें गुलजार दादी को दिया है जो कि भगवान का रथ है। और जगदीश भाई को भी दादी को कुछ बताना हो, कुछ कारोबार की बात करना हो, तो पर्सनल बैठ के मिल के बात करती थी दादी जगदीश भाई जी से। तो ऐसा स्नेह था दोनों जने का। और दादी 93 में बीमार हो गई थी दिल्ली करोल बाग में, और दिल्ली करोल बाग में बीमार होने के कारण उनको मधुबन नहीं आना चाहिए था, लेकिन दादी की दिल बहुत थी मधुबन आने का, और मधुबन आने का दिल होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का प्रोग्राम होने वाला था मधुबन में, तो दादी को जगदीश भाई जी ने प्लेन में लाए। फिर दादी ने प्रोग्राम भी अटेंड किया, बाबा से भी मिले, और बाबा से मिलने के बाद में एक महीना शायद हॉस्पिटल में रहे, और हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर मित्तल जी थे, और दादी वहीं पे बीमार हुई और कोमा में चली गई। तो एक दिन डॉक्टर मित्तल जी बता रहे थे कि दादी कोमा में थी 8-10 दिन 9 दिन शायद कोमा में हो गया था दादी को, कुछ नहीं बोलना चलना कुछ नहीं, बस एकदम कोमा में थी, श्वास चल रही थी। तो मित्तल जी बता रहे थे कि एक बार बड़ी दादी गई मिलने के लिए दादी से, और बड़ी दादी गई तो दादी को जगाया, दादी दादी ऐसे कहा, तो दादी से मिली, बात किया, कुछ कहा दादी को, फिर दादी कोमा में चली गई। जब ऐसे जब देखा डॉक्टर मित्तल साहब तो बोले कि दादी तो अभी अभी जगी है, अभी भी फिर कोमा में चली। फिर दादी को खूब ऐसे ऐसे दबाया, फिर बहुत बोला, दादी आप बात क्यों नहीं करती, अभी तो आपने दादी से बात किया, मेरे से क्यों नहीं बात करती, मेरे से क्यों नाराज, ऐसे खूब दबाया। तो बोला मुठ्ठा बाबा की याद नहीं हो। फिर इतना कह के दादी फिर से कोमा में चली गई, और उसके शायद 2-3 दिन में दादी अव्यक्त हो गई। तो ऐसी थी हमारी मीठी प्यारी और डॉन्डर दादी। सुरेंद्र भाई बताते हैं जो रिसेप्शन में रहते हैं कि वो बताया था कि दादी बहुत रमणीक थी, बहुत जिम्मेवारी भी संभालती थी, बहुत रमणीक थी। तो दादी को एक बार मधुबन आना था, और मधुबन आना था तो दादी ट्रेन में बैठी और दादी के साथ मैं भी ट्रेन में बैठा। तो दादी का फेवरेट शब्द था, वो तो बताने के लिए भूल गया था, लाला ए लाला ऐसा, हाँ लाला ये करो लाला, ऐसे करो भोजन करो लाला, कब आए लाला, घर में सब ठीक है लाला, ऐसे लाल लाल कहती थी। तो सुरेंद्र भाई भी बैठ गए, तो दादी पूछी लाला कहाँ जा रहे हो, तो बोला दादी आप मधुबन जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ मधुबन जा रहा हूँ। तो बोला मेरे साथ मधुबन जा रहे हैं लाला, सेवा कौन करेगा लाला। तो बोला दादी सेवा बाबा संभालेगा, क्योंकि सुरेंद्र भाई को 2 स्टेशन के बाद उतरना था, कुछ काम था और वो करना था। तो दादी इतना सेवा की जिम्मेवारी रखती थी, बहुत जिम्मेवारी से सेवा करती भी थी, कराती भी थी, हर एक को आगे बढ़ाती थी। ऐसे दादी को हम सत सत नमन करते हैं। ओम शांति।